ये अपुत्र की है, कोई घर में संतान एक दुखी होकर के अपना प्राण को त्याग देने के लिए घर से निकल रहा था, जाकर के एक सरोवर के पास में बैठ करके बड़े जोर जोर से रो रहा था। भगवत इच्छा से कोई एक संतों वहां पर बताए, संत ने देखा कि क्यों रो रहा है जंगल के कारण। जब संत ने आया सोचा शायद भजन के लिए आया है, जब वो संत आए है तो उन्होंने वो संतों के चरण पकड़ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और सारे दुख की बात कह सुनाया। उसको पता है जो ना करे लकड़ी सो करे फकीर, मतलब भाग्य में जो चीज नहीं है, हाँ जो ना कर लकड़ी, जो भाग्य में जो चीज नहीं लिखा हुआ सो करे फकीर। अगर संत अगर बोर्ड दे बेटा तो ये हो जाए तो पता है, क्योंकि संतों का हृदय में भगवान स्वयं बैठे। अगर संत कुछ वो कह देते हैं भगवान, अगर भाग्य नहीं है, अगर संत कोई कह दे फिर तो भगवान को उस संत का वाणी को फिर उनको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि भक्तों का मुख्य वाणी कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए उनका चरण पकड़ करके उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। रोना प्रारंभ कर क्या बात है, अगर घर में कोई संतान नहीं, घर के हर घर का बड़ा सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, संत बहुत समझाई देगा संतान से कोई समझ नहीं होते। तब मैंने चित्र के महाराजा का पता सुनाया, जो पूरा पृथ्वी का जो राजा थे उनको कोई संतान नहीं था, शादी करते करते उन्होंने 1 करोड़ रुपए में शादी कर लिया एक संतान को लालसा से, तब भी घर में कोई संतान नहीं। बात ऐसे है संतान हुआ जो संतान के उपहार दूर उठाना पड़ा, इसलिए लास्ट उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रभुता भजन करके जीवन में सुखी किए। बोले बेटा संतान से कोई सुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं पर उनकी भक्ति से बेटा भजन कर, लेकिन वो तो उल्टा ही बदल करने लग गया। कहते संतों का जीवन ये सुखा जीवन है, हाँ कोई घर में पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, घर में गिलकर मार खेलने वाले कोई नहीं, मीठी मीठी बोलने वाले कोई पत्नी नहीं, ये तो संतों का जीवन सुखा जीवन है, निरस जीवन है। आपको क्या पता है भरत देश में क्या आनंद होता है, पत्नी कैसे मीठी मीठी बोलती है, बच्चे कैसे गिलकर मार घर में खेलते हैं, गोद में कैसे खेलते हैं, तो आपको क्या संतों को पता है आपका जीवन तो सुखा जीवन क्या आगे रहते प्रभु का क्या काम देते रहे तो उसमें क्या आनंद है। इसलिए हम तो चाहते गृहस्थ जीवन है। संत ने देखा देखो इसको अभी कोई ज्ञान भी काम नहीं करता है, जब तक थप्पड़ नहीं पड़े ना तो तब तक ही ज्ञान भी काम नहीं करेगा, ये तो मेरे को उल्टा ही बोलने से डर लग गया। लेकिन उनको पता नहीं संत कौन सा रस में, संत को कौन सा भक्ति की अमृत सागर में कैसे गोता लगाते रहते हैं इसको पता नहीं। संत के हृदय में तो वो आंख बंद करते समाज होते उनके हृदय में प्रभु की नई नई लाती दिप दिप झांकी को दर्शन करते रहते हैं। इसलिए प्रमाण अर्जुन का भक्ति विरोधन नाम संत सदैव हृदय सुखिलो करती अपना दीप नेत्र द्वारा प्रभु की सुंदर सुंदर दीप दीप झांकी उनको सुंदर सुंदर लीला रस में गोता लगाते रहते हैं। इसलिए इसको क्या बता रहे ठीक है ये मानेगा नहीं वैसे जब तक थप्पड़ नहीं पड़े। तब उन्होंने एक पेड़ से फल लिया, उन्होंने मंत्र पुत्र दिया, मंत्र पुत्र करके उन्होंने एक फल दे दिया, फिर बेटा ये फल को लेकर अपना पत्नी को दे देना और बोलना पत्नी झूठ नहीं बोले, भागवत गीता पढ़े, झगड़ा नहीं करे, सदाचार पूर्वक रहे, एक सुंदर राजकुमार के जो तुम्हारी एक संतान होगा। ब्राह्मणों को तो आनंद इतना नहीं रहा, नाचते नाचते कुछ दिन उनके आए और पत्नी को फल दिया, संतान ने फल दिया है उसको खाओ हमारे घर में बेटा होगा। लेकिन जब वो धुंधली को दिया देखकर चला गया, धुंधली ने सोची कहां से आपद ले आए, बोलते फल खाने पर बेटा होगा तो किसने फल खाया, सारा दुनिया फल खाते हुए बेटा होता है। और अगर ये बेटा होएगा उनको क्या पता है बेटा गर्भ में, मैंने सुना है ये सुखदेव गोस्वामी उनको माता जी को घर में गर्भ में 16 साल तक रहे, माता को पता है गर्भ में बेटा अगर 10 दिन तक रहे इतना कष्ट करना पड़ता, लेकिन मैंने सुना सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक रहे, अगर मेरे गर्भ में वो बेटा 16 साल तक रहा तो और पेट बड़ा हो जाता है और कोई अच्छी चीज खा नहीं पाते हैं कहीं अगर गांव में डाकू आ गए फिर भाग नहीं पाऊंगी, क्योंकि जितना नहीं उसका जो प्रसव क्रिया है इतना कठिन है प्रसव क्रिया, केवल इतना नहीं बच्चा जन्म होने का बाद उसको जो लालन पालन करना इतना कठिन है, कहीं माता को पता है। कहीं इससे तो अच्छा है जगत में कोई सुखी हो तो बांझ, नहीं तो कोई विधवा, पता नहीं कहां से आपदा लेने का आ गया। अभी उसका मन में तरह तरह का संचार लगा, बड़ा दुखी थी उनको छोटी बहनी आई, बहन तो दुखी क्यों, देखो पता नहीं कहां से आपद ले आई, घर में बलून फा लिखा और बेटा होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, तेरे पति के पास बहुत सारे पैसा है, एक काम करो कुछ पैसा मेरे पति को दे दोगे, गरीब गरीब हूँ और मेरे गर्भ का भी बच्चा आ गया, तुम पेट में कपड़ा दे करके पाखड़ा बना करके सोते रहो, मैं गर्भवती हूँ और मेरे घर में जो बेटा होगा मैं छुपा करके तुम्हारे घर में ले जाऊंगी। हाँ फिर तो कुछ धन दे देना, वहां सुनने पैसा करने के लिए एक फल सच्चा की चूसा एक दया पूजा दो, अब ऐसे क्या तो वो बाहर बना कर पेट में कपड़ा दे कर सोती रही, जब उस बहन की बच्चा हुई तो मैंने छुपा करके रात रात दे करके चली गई और सफेद होते उन्हें हला करती मेरे को बच्चा हुआ है, उनको पति के तो आने से सीमा नहीं रहा, बड़े नाचे कूदे मेरे घर में लाला हुए हुए लाला, बड़े आनंद किया। इतने में वो तो संत का दिया हुआ फल, वो तो दरिया पिलाया था, वो तो संत का फल है, वो तो व्यर्थ में जाएगा ही नहीं, उसको गर्भ से होकर नाम का संतान हुआ। देखने में तो इंसान जैसे काम दया जैसे इतने सुकुमार राजकुमार जैसे संतान जन्म हुआ, सारा दुनिया आश्चर्य में पड़ गई, फिर प्रभु देते तो देते नहीं तो देते नहीं, जब देते हैं सफर फाड़ करके देते हैं, उनका बचा नहीं हो रहा था अभी दया भी बचा दिया, आश्चर्य हो गए देखने के लिए आए, लेकिन वो तो संत का दिया हुआ फल इसलिए गोकर न तो उनको नामकरण कराया, एक नाम गोकर न एक नाम दुनु का रखा और धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए कहते गोकर न पंडित ज्ञानी दुनु का महात, संत का फल तो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तो विद्वान बड़ा पंडित हुआ बड़े ज्ञानी हुआ जितने मार पी शराब पीना बेसिया को साथ गया था, ऐसे कोई कुकर्म नहीं तो कुकर्म उन्होंने नहीं किया, बाद में अपना पिताजी को पिटाई भी किया, मैया को पिटाई भी किया, कहते कहा पैसा लाओ, पिताजी ने देखा पहले बेटा था नहीं मैं तो बड़ा सुखी था, लेकिन ऐसे में बेटा हुआ जो कि नाम दुआ दिया, सचमुच से वो संत जो बोल रहा था बेटे से सुखी नहीं रहोगे ये बात सही है। अभी संत की बात याद आया है, संत ने जो कहा था अभी तो बड़ा परेशान बड़ी दुखी हो गया, दुखी होकर के फिर तो गोकर ने उनको बड़ी सुंदर उपदेश दिया, कहते पिताजी कहते नचंद्र सुख नास्ती पिताजी आप ये मत सोचो स्वर्ग में जो इंद्र है वो सुखी है, कहते स्वर्ग का इंद्र भी सुखी रही न चंद्र से सुखम नास्ती, आप लोग कथा सुने होंगे इंद्र को पता नहीं कितने कितने बार उसको अभिसंपात मिला है, कितने कितने बार स्वर हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा, कहते स्वर्ग में इंद्र भी पिताजी सुखी रहे हैं और न चंद्र से सुखम नास्ती न सुखम चक्रवर्ती का, पिताजी ये मत समझिए अगर देश में राजा अगर बन जाएंगे तभी सुखी रहेंगे, अब सब जानते हो हमारी इंदिरा गांधी राजीव गांधी सब गोली में सब घूमने गए, सब के सब मारा गए, हम तो निश्चित रूप में इधर उधर घूम सकते हैं लेकिन जो बड़े बड़े पद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निश्चित रूप में नहीं घूम नहीं सकते, उनको पीछे कितने कितने गार्ड है पता नहीं, आपको पता सोनिया गांधी क्यों गद्दी पर नहीं बैठा आपको पता है, कोई कोई मार बजाय सिद्धार्थ मारे वो नहीं बैठी है, इसलिए गोकर में कहता है पिताजी ये मत समझो अगर अब राजा बन जाने पर सुखी रहोगे, ऐसे बात नहीं स्वर्ग का इंद्र बन जाने पर भी कोई सुखी नहीं रहते, पूछा बेटा फिर सुखी कौन है जगत में कौन सुखी है, जगत में एकमात्र एक व्यक्ति सुख है संत एकांत जीवन जो कि संपूर्ण रूप में प्रभु के चरण में संपूर्ण समर्पण है संपूर्ण भगवान के चरण समर्पित जो आत्मा है, जैसे आप प्रहलाद का नाम सुने हो, उसको पिताजी इतना बड़ा कर्म थे, प्रहलाद एक 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसको जिसको डर मारे स्वर्ग का इंद्र भी भाग गया, लेकिन एक 5 साल का बच्चा था, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो संपूर्ण भगवत शरण में था। इसलिए अगर हम प्रभु को शरण में अगर हम रहेंगे, प्रभु के जीवन में भक्ति करेंगे, तो तभी जीवन में हम सुखी रह सकते हैं। उन्होंने पिताजी को बड़ी से सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए, पिताजी अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो, ये संसार का आसक्ति को छोड़ो, सबको जरूरी संसार का आसक्ति छोड़ करके प्रभु को साथ में अपना संबंध जोड़ो, और दूसरों को निंदा चर्चा मत किया करो, और दशमांश पाठा उपदेश हो गया, हमने सारे आसक्ति को छोड़े और प्रभु के चरण में जाकर शरणापन्न होकर के प्रभु का भजन करके जीवन में सुख लिया। देखो ये कथा यही शिक्षा है, आत्मदेव कितने बड़े पैसा वाले, हाँ हम सोचते हैं पैसा मिलने पर भी, पैसा मिलने पर शायद हम सुखी रह जाएंगे, उनके पास जो अच्छा पैसा था, अब चाहते सुंदर पत्नी होनी चाहिए, उनको जो पत्नी जो धुंधली वो परम सुंदर थी, हम सोचते हैं शायद सुंदर पत्नी और पैसा होने पर हम सुखी रह जाएंगे, फिर पैसा तो उनके पास था, पैसा था, पैसा भी उनके पास निकल नहीं था, ये पैसा भी था,
सब तरह से कुशल है, सब ठीक चल रहा है,
सोचते घर में जो बेटा हो जाए, संतान हो जाए, शायद हम संतान में सुखी हो जाएंगे, उनको संतान भी मिल गया, लेकिन क्या सुखी रहे, तब उनको सुख नहीं मिला, लेकिन कब सुख मिला, जब सारी आसक्ति को उनसे छोड़ जाए करके अपना मन प्राण चित्त को संपूर्ण भगवत भजन में जब उन्होंने लगाया, तभी जीवन में ये सुखी हुए। हमारे शास्त्र उपनिषद पूरा यही उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अग्रणी बच्चे थे, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, तरह तरह देश से आए, उनको देश में किसी कभी कोई छुट्टी कभी नहीं है, तभी ये लोग सब छोड़ छाड़ करके हमारे भारत में आए, देखो तिलक लगा गला में कैसी हाथ माला भजन कर रहे हैं, हम लोग तो पाश्चात्य शिक्षा में बड़े हम भाग रहे हैं, उन लोग उनको शिक्षा से नफरत हो करके हमारे भारतीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं। इसलिए जीवन में हम तभी सुखी रह सकते हैं अगर प्रभु का जीवन में भजन करें। तो भगवान चाहकर उत्तर में सभी पास कविता नाम
आप लोगों ने रसानंद जी से सुना, बैठो बैठो, तो सारे विश्व के जितने धनी आदमी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सभी लोग मिलकर के हमारा बुढ़ापा रोक देंगे तो, हमको बूढ़ा नहीं होने देंगे तो, आखिर बूढ़ा होना होगा, जरूर बूढ़ा होना होगा। और एक दिन चाहिए सब लोग चाहें सब कुछ करें, किंतु एक दिन शरीर को भी छोड़ देना है, और आप लोग चेष्टा करेंगे मरने के समय में जो कुछ किया है उसका एक पैसा दमड़ी भी साथ ले जाइए तो, नहीं ले जा सकते, अपने बेटे को साथ में ले जाएंगे, कोई भी नहीं साथ जाएगा, आपका शरीर भी नहीं जाएगा, तो किस लिए गधे जैसा परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए सरल सहज रूप में भगवान का नाम कीजिए और सुखी रहिए। प्याज लहसुन मांस मीट विशेष करके शराब धूम्रपान तंबाकू का गुटखा मसाला इत्यादि न खाएं, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भगवान के तरफ में आने की रुचि नहीं होती, इन सबको दूर करके भगवान का भजन कीजिए। अभी प्रहलाद महाराज जी का जिक्र किया, छोटे उम्र से ही किस प्रकार से भगवान का भजन किया और अपने साथी जो दैत्य बालक थे उनको क्या उपदेश दिया भजन करने के लिए, आप लोग श्रीमान तीर्थ महाराज जी से सुने कुछ संक्षेप में।
गुरवे चंद्रायचाय जलाय कृष्णाय कृष्णदत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अचंद कोटि उत्पन्न किया तदनंतर उपस्थित बड़े संतुष्ट समस्त शरीर माता ने अभी अभी माया जी ने आज्ञा दी थी इस कथा को आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि भागवत में ऐसे भी प्रसंग आया है कि एक और हिरण्यकश्यप दूसरे और प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में प्रहलाद परम भक्त था जो कि छोटा सा बालक 5 वर्ष के पिताजी ने उन्हें पढ़ने को गुरुकुल में भेजा परंतु बचपन से ही भगवान के स्मरण में डूबे रहे जिनको उनकी माता जी जबकि कुछ खाने पीने को देती वो भी ध्यान में नहीं रहता क्योंकि निरंतर कृष्ण के स्मरण में डूबे हुए इसलिए उन्हें कोई भी चिंता नहीं कोई परेशानी नहीं हमेशा एक प्रसन्न चिंतन सदा आनंद में डूबे रहे। तो कुछ दिन जबकि गुरुकुल में जाकर के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की फिर पिताजी के पास में लौट के आए उस समय पिताजी ने उन्हें एक वचन पूछा कि बेटा तुमने जो कुछ अच्छी बात सीखी हो हमें क्यों सुना दो। तो गोदी में लेकर के लाड़ प्यार करते हुए पूछा और कैसे कि तो उस समय बालक ने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि हे पिता से तो साधु मन नहीं अश्र बढ़ते नहीं सदा समुद्रित नदिया असत ग्रहा हित्वात्म पादम गृहमत्त कूपम बनम गतो यत हरि मास्टर। संसार में सबसे बड़ा साधुता वही है सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही है जबकि एकांत रूप से गुरु के चरणों में आश्रय लेकर कोई भगवान श्री हरि का भजन करता है क्योंकि संसार में रहते हुए सभी लोग उद्विग्न है और गृह रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं जैसे कि अंधकुआं का वर्णन भागवत में दिखाते हैं कि एक व्यक्ति कई जंगल में जा रहा था और पीछे से बाघ उसको आक्रमण करने को जा रहा जैसे बाघ को देखा तो इतने में वो कूदता हुआ सामने ये कुआं था कुएं में लटक गया उतर गया तो वहां पर कुएं की दीवार में झाड़ियां थी जिस झाड़ियों के डाल को पकड़ करके लटक गया तो उसी में मधुमक्खी की छत्ता लगी हुई और दो चूहा आकर के उसमें काटने लगे उसी डाली को और मधुमक्खी की छत्ता से सारी मक्खियां चारों ओर से घेर लिया काटने लगे। इतने में शहद टपक रहा है परंतु ऊपर से बाहर और नीचे कुआं में पानी नहीं था तो कुएं में एक काला सा सांप था वो भी फन उठा लिया काटने के लिए तो ऊपर मृत्यु नीचे मृत्यु और अभी वो डाल काट देंगे अभी गिरेगा बचने का कोई सवाल नहीं फिर भी लटकता हुआ जबकि नाक के सामने से शहद टपक रहा है कुछ सोच रहा है अब जीवन में दो बूंद शहद पान करते हुए इसी में डूब जाऊं खो जाऊं मृत्यु को भूल जाऊं सारी बातें। तो इस तरह से वो कभी में ही अब खो कर गए जैसे शराब पीते हैं लोग इसी तरह से अब बेबी अब मधुपान करने लगे कि हम इसी में खो जाएंगे परंतु मृत्यु में घिरी हुई तो कहां बच सकते हैं ऐसे जहां हम संसार में जी रहे हैं ये संसार जो है ये रूपी अंग जिस शरीर रूपी डाल को आश्रय करके हम लटक रहे हैं कि इस शरीर के द्वारा हम सुख भोग करेंगे परंतु सुख नाम का चीज है ही नहीं, क्योंकि जमराज हमारी चोटी पकड़े हुए हैं। काल रूपी सर्प आगे पीछे चलते फिरते हमेशा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कभी कब पछाड़ मारेगा कोई पता ही नहीं। और उसके बीच में हम संसार का जो पुत्र परिवार अत्य सजग इनके सुख का भोग रहे हैं, हम सोच रहे हैं इनसे हमें सुख मिलेगा। मक्खियों की तरह चारों ओर से काट रहे हैं, जावा जंतना कह रहे हैं, दिन और रात जो कि दो चूहे की तरह हमारी आयु को काटती जा रही है। जो काट रहे हैं हमारी आयु बहुत थोड़ी सी रह गई है। इसके बीच में हमें सुख का प्रयास या शांति कदापि संभव नहीं। इसलिए अभी अभी आपने सुना है शांति कहाँ है, मुने एकांत जीवन। जबकि गुरु आश्रय करके कोई भजन करता है तब उन्हें शांति मिलती है, अगर कहीं शांति यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। और प्रहलाद महाराज जी की बात सुनकर के पिताजी तो बिगड़ गए, बड़े जोर से मिले, बोले कि चारों ओर से घेराबंदी कर दो, ऐसी कड़ी बारा लग जाए कि कोई भी अंदर आ नहीं सके, और इस बालक की बुद्धि को न बिगाड़े। ऐसे ही कुछ दिन चला, बालक पढ़ते रहे। फिर से बालक जब आया तो बालक को पूछा तो बालक ने फिर से वैसे ही जवाब दे दिया, बोले कि हे पिताजी, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्या तो यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान की कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, पूजन करें और उनके चरणों में आत्मसमर्पण करें। और इस तरह से अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए जो कोई भक्ति करता है तो वह निष्काम भक्ति ही यथार्थ कहलाता है। नहीं तो अपने सुख के लिए तो सभी लोग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उससे कोई शांति नहीं मिलती है। इसलिए निष्काम रूप से जब उनके प्रतिविधान के लिए भक्ति की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति उत्तम विद्या है। इस बात को सुन करके तो हिरण्यकश्यपु को राग नहीं गया, और उस समय आग बबूला हो गए, मिर्ची जैसे चल रहा है। संता मर्क को बुलाया, बड़े जोर से बिगड़े, बोले कि अभी तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तो उन समय उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें, इस बालक को पूछे कि यदि हमने शिक्षा दी हो तो आप हमें मृत्यु दंड दें, और यदि और किसी ने सिखाया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। उस समय बोले कि रे बालक अभद्र, कहां से तुमने सिखाया, किसने तुम्हें सिखाया। बोले कि हमारी बुद्धि तो भगवान में अपने आप लगी हुई है, जैसे चुंबक ध्रुवा को खींच लेता है, इसी तरह से हमारी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, हमें किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप लगी। तो इस तरह की बात है। तो उस समय प्रहलाद जी ने कहा कि जिन लोगों की बुद्धि विषयों में लगी हुई है, जिन लोगों का हृदय मलिन है, काला हो रहा है, वे उसी नजर से ही दुनिया को सबको देखा करते हैं, तो दुराशया वही अर्थ मानी, और बाहरी विषयों को संपदा को धन दौलत पुत्र परिवार भोग सुख खाना पीना यही जीवन का सब कुछ है ऐसे ही मान बैठा है, तो उनकी बुद्धि कहां सुधरी। और क्या करते हैं, अंधा जथम नहीं रूप नियम, एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके जैसे गड्ढे में गिरते हैं, इसी तरह से संसार रूपी गर्त में गिरे हुए व्यक्ति जो मोटी मोटी गांव में बंधे हुए एक घर बना करके उसके चारों ओर घूमते हैं, इस घर को एक मंजिल से अब पांच मंजिल कैसे पहुंचा, पांच से पचास मंजिल तक पहुंचा दे, तब तो हमारे जीवन की अनमोल कीर्ति बन जाएगी। इसी प्रकार संसार के लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन दौलत को अपना कीर्ति अपना संपदा अपना पौरुष मानते हैं, तो बुद्ध संसार में पड़े हुए उनकी बुद्धि भगवान में कहां लग सकती है, कदापि संभव नहीं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान में क्यों नहीं लगती है, हजारों व्यक्ति तो हमें उपदेश सुनाते हैं, कितने कितने हम प्रवचन सुने हैं, अपने से प्रयास करते हैं, घर में मिलकर के पति पत्नी ये भी बात करते हैं कि हमें भगवान का भजन करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, परंतु होता ही नहीं। बोले क्यों, अदांत को सबसे पहले हमारी इंद्रिया जो है विषयों में डावाडोल हो रही है, फिर गृह प्रदानम घर का हमने व्रत बना रखा है, गृह सुख को ही अपना सर्वस्व माना है। हमने कभी सोचा नहीं कि हम कभी गुरु की सेवा करें और भगवान की सेवा करें और उनकी सेवा करते उनको हम प्रसन्न करें, हमने जीवन में कभी भी नहीं सोचा। किसी ने सोचा होगा तो वो बड़ा ही दुर्लभ होगा। तो इस तरह की बातें और वेदांत को भी विशतांत मिश्र मन हमेशा कहा जा रहा है गड्ढे में, बुरे चीजों में, गलत चीजों में, कभी अच्छी बातों को कभी स्मरण नहीं किया और ना ही करता है। और चबाई हुई चीजों को रोज दिन खाना पीना भोग लेना, वही रोटी कपड़ा मकान महल वही सब कर रहे हैं और कुछ आगे नहीं हो रहा है। पांचवा विषय से छठवा विषय कुछ है ही नहीं। तो इसी प्रकार जहाँ हम पड़े हुए हैं इसमें रहते हुए कदापि शांति है? एकमात्र शांति का पर मंगलमय रास्ता तो वही है जो कि जबकि कही कोई महान पुरुष के चरणों में अपने को नोछावर करें, अपने को अभिषेक कर डालें, तब भगवान में जाकर के बुद्धि लग सकती है, अन्यथा कदापि नहीं। इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कष्ट देने के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने के लिए सारी सेनाओं को दैत्य दानवों को आदेश दिया, जबकि दैत्य दानवों ने प्रहलाद को मारने के लिए सैकड़ों प्रकार से प्रयास किए परंतु सारा ही सारा व्यर्थ हो गया। कोई भी प्रहलाद को कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, क्यों? गोविंद बाहु परिरंभित, भगवान की पूजाएं बहुत लंबी होती है। कहीं भी कोई भी रहे भगवान तो अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं, हम तो उनको देख नहीं पाते हैं परंतु वे तो हमें देख रहे हैं और हम उनके शरण में हैं, वे हमारी हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान तो हाथ बढ़ाए हुए हैं, प्रहलाद को जब पहाड़ के ऊपर से गिराया उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, हथेली पर रख दिया, पत्थर को पत्थर में रस्सी बांध करके, गले में रस्सी बांध करके पत्थर के साथ में पानी में फेंक दिया तो पत्थर भी तैरने लगा, सांप के सामने छोड़ दिया तो सांप ने काटा नहीं और बाद में भी छुया भी नहीं। तो इसी तरह से जहाँ कहीं जिस प्रकार के प्रयोग किया सारा ही व्यर्थ हो गया। अंत में जबकि गुरु गृह में कुछ दिन और पढ़ने लगे तो एक दिन गुरु संडावर को दोनों ही बाहर चले गए, बच्चे सब खेलने के लिए प्रहलाद जी को बुलाया तो प्रहलाद जी ने कहा बच्चों भाइयों सुनो मेरी बात को सुन लो। तो उस समय उन्होंने बुला करके कहा देखो भाइयों एक बहुत सुंदर बात मैं करता हूँ जो कि आप लोग सुनो। उस समय उन्होंने बताया कौमार आचरे प्राग्ञ धर्मान भगवतान, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, जिनको संस्कार पड़ा हुआ है बचपन से जरूर कभी न कभी तो काम देगा और वही संस्कार बनता चलेगा, जबकि संसार का ऋण सारा हृदय में भर जाए और बुढ़ापे में जाकर भजन करना चाहे तो भगवान का स्मरण कदापि संभव नहीं। इसलिए हमारे संस्कार को स्वभाव को आचरण को उसी रूप में ढाल लेता है जैसे बचपन से ढाला जाता है भगवान के भजन में, प्रभु की भक्ति में, सेवा में, तो ऐसे ही बन जाता है। यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, लाखों करोड़ों आत्माएं घूम रही हैं, जिनको जन्म लेने का कोई अवसर नहीं, कोई सौभाग्य सुयोग नहीं मिल रहा है, परंतु प्रभु ने हमें आज वो अवसर दिया है, ऐसे हम दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं। इस मनुष्य जीवन में केवल अर्थ का प्रयास करना, धन दौलत का प्रयास करते हुए धन कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर किसके लिए छोड़ के जाएंगे, कौन है पीछे, और उनके लिए फिर हाय हाय और मोह, फिर उन्हीं के कारण वहीं पर आकर के जन्म लेना होता है। ऐसे ही तो बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे ही संसार में आवाहमान काल से हम लोग आते जाते रहे हैं। इस जन्म मृत्यु रूप प्रभाव में पड़े हुए जो कि हम लोग क्या करते हैं, गृह सुख इसी को ही हम लोग बहुमानन करते हैं। हम लोग संसार के मोह में इतने जकड़े हुए हैं कि कौन छोड़ करके, इतनी सारी सुख सुविधा छोड़कर कौन जाएगा कष्ट उठाने को और कौन भजन करेगा। कष्ट ले दुरंत मोह, कोई मोह को छोड़ नहीं पाता है। अपनी सुख सुविधा में पड़े हुए हैं, जीवन में त्याग नहीं हो पाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति, भोग से नहीं। जहाँ हम भोगों की ओर दौड़ते हैं तो कहाँ पर अशांति है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे दैत्य बालकों, इन दैत्यों का संग ततो विदुरा परिहित दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण आदि देवं समुक्त संगई निषिदोपवर्ग। हे भाइयों, इन दैत्यों का संग जो विषयी है, जड़ है, विमुख है भगवान से, ऐसे लोगों का संग त्याग कर एकमात्र आदि देव भगवान नारायण का शरण ग्रहण करें और उन्हीं के आश्रय में जाकर उनके नामों का कीर्तन करें। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए कोई अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। नालम नियतम देवतम ऋषितम वासुरात्मजा प्रेरणायन मुकुंदस्य न वित्तम न बहुज्ञता, बहुत कुछ जानने से नहीं, ब्राह्मणता से, धन दौलत से, भोग वैभव से, बहुत कुछ पूजा पाठ करने से, किसी से उनको शांति, ये भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होते हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, एकांत भक्ति गोविंद, जबकि एकांतिक भाव से भगवान गोविंद के चरणों में भक्ति होती है तो उसी से वे प्रसन्न होते हैं। यही जीवों का परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है, जो कि अपने मन प्राण हृदय प्रभु के चरणों में समर्पण करें। इन्हीं भक्तों के साथ में मैं यही रखता हूँ, जो कि प्रहलाद महाराज जी बच्चों के साथ में वे कीर्तन करने लगे, सभी को भक्त बना दिया और इसी तरह से वे सबको भक्तिमय बनाए। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही भक्तिमय हो, आनंदमय हो और प्रभु के चरणों में समर्पित हो, इन्हीं प्रार्थना के
साथ। कितने बजे हमको जाने, कितने बजे, कितना बजे निकलना है तुम लोग? 6:30 सात बजे तक होने से होगा, हाँ तब छोड़ दिया जाए। अभी हमारे तीर्थ महाराज जी ने बतलाया कि कुआं, एक मरा हुआ कुआं, पानी नहीं है, और एक व्यक्ति को बाघ ने खदेड़ा, उन दोनों डालियों को पकड़ करके पेड़ की, जो कि उसमें से उग आए थे, और वो नीचे झूल गया। नीचे देखा बहुत से विषधर सर्प फन उठाए हैं, और ऊपर में बाघ देख रहा है, ऊपर आते ही उन्हें खा जाऊंगा, चारों तरफ मृत्यु है। वो डाल क्या है? हमारे कर्मों से निर्मित आयु है। दो चूहे काट रहे हैं उसकी उन डालियों को जिसको हम पकड़ रखे। चूहे क्या हैं? एक है रात, एक है दिन। दिन और रात मिला करके हमारी आयु क्रमशः चलती चली। मैंने पूछा कि कितनी आयु हुई? 71 वर्ष की। नहीं, 71 वर्ष की आयु नहीं है, 71 वर्ष आपका बीत गया। इस तरह से ऊपर से मधुमक्खियों से जो मधु टपक रही है वो क्या है,
स्त्री पुत्र परिवार पति का जो परस्पर संसार का जो सुख है वो दो बूंद मधु के समान है। बस लिया वो कितना मधुर, और मृत्यु चारों तरफ में है इसको भूल गया। ऐसी हम लोगों की दशा है, चारों तरफ में मृत्यु मंडरा रही है, कब कहां किसकी मृत्यु हो जाए कोई ठीक नहीं। अभी चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया, एरोप्लेन में जा रहे हैं, सामूहिक रूप में ही सबकी बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, और एक बच्चा किसी प्रकार से बच गया, कोई ठीक नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने वाला ही सुखी हो सकता है। वनम गतो जद हरि मास, वनम माने साधु के साथ में जाओ रहो, घर बार छोड़ने की बात नहीं है, जहां से रहे वहीं से साधु संग करो, और वो जो कहते हैं वैसा जीवन चरित्र बनाकर भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना खूब कठिन नहीं है, भगवान तो पैर बढ़ाए हुए हैं जैसा इन्होंने कहा, बस हम भगवान का आश्रय ग्रहण करें, मैं आपका शरणागत हूं, बस इतना ही कह दें, भगवान एकदम दौड़ करके आएंगे बचाने के लिए। और उन्होंने कहा एक बात और, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? बचपन में बुद्धि कोमल होती है, सठिया जाने के बाद में उसको जितना भी कुत्ते की पूंछ को 100 मन घी लगाया और सीधा किया, फिर क्या होगा? ऐसा कर सठिया जाने के बाद में फिर मुश्किल होता है। बहुत कम लोग भगवान के तरफ में भजन गया, वो एक न कोई एक रास्ता अपने लिए चुन लेते हैं, उस समय उनको उपदेश देकर के कुछ नहीं कर सकते। बचपन में जैसे बांस कोमल होता है तो उसको जैसे तैसे उससे बना सकते हैं, उससे बचपन में बुद्धि कोमल होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं देखो 100 वर्ष की आयु है, उन्होंने कहा बच्चों ने जब बूढ़ा हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अरे कब तू बूढ़ा होगा कि बूढ़ा होगा नहीं, इसके पहले ही मर जाएगा तो कोई गारंटी है जब मैं बूढ़ा हो ही जाऊंगा? बूढ़े तो तैयार है मरने के लिए, जवान लोग मर रहे हैं। इस तरह से वो कहते हैं आधी आयु हमारी 100 वर्ष की कलयुग की मान लें तो आधी आयु 50 वर्ष सोने में चला जाता है, और यदि कोई मदिरा का सेवन करता है तो दिन भी सोएगा रात में भी सोएगा, तो उसकी आयु का कुछ नहीं। दूसरी बात, 50 वर्ष तो सोने में चला गया और 20 वर्ष की आयु कम से कम बचपन से पढ़ने लिखने एक्सपर्ट होने में, 20 वर्ष नहीं आजकल 25-30 वर्ष लग जाता है, खैर 20 ही वर्ष शास्त्रों ने रखा, और 20 वर्ष की आयु 80 से लेकर के 100 वर्ष में आयु में कमर सीधी नहीं होगी, तरह तरह के रोग जकड़ लेंगे, गला घर घर करेगा, अस्पताल में ही जीवन व्यतीत होगा। इसलिए वो 20 वर्ष और पहले का 20 वर्ष 40 वर्ष चला गया, उधर 50 वर्ष बाकी बच गए 10 वर्ष। 10 वर्ष में विवाह शादी करना है, बच्चों को योग्य बनाना है, घर बनाना है, कार ले आना है, जितने बच्चे और वाइफ हैं उतनी कार चाहिए घर में, आज कंप्यूटर का युग है वैसी शिक्षा होना चाहिए। तो भगवान का भजन करोगे कब? इसलिए बचपन से ही कुमार अवस्था से ही किसी एक्सपर्ट को खोजो जो कि कुछ भजन कर चुका हो, जिसको भगवत अनुभूति है और संसार से विरक्ति है, ऐसे गुरु के ढूंढो। जो हमें घर में रहता हुआ भी या संसार छोड़ करके भी मार्गदर्शन करते हुए हमारा भजन करा सके। देखो मुसलमान लोग रोज क्या करते हैं, 3 बार नमाज पढ़ते हैं, कितना कसरत करना पड़ता है, तुमको भगवान, हमारे हिंदुओं में सनातन धर्म में इतना करने की जरूरत नहीं है, व्यायाम कसरत करने की जरूरत नहीं है। यदि हाथ उठा करके उनको प्रणाम कर सको ये भी जरूरत नहीं है। जैसे तैसे हरिनाम मुख से निकल गया बस, जहां हरि निकला मुख से समस्त संकटों को हरण कर देंगे। यदि राम कह दिया तो जीवन से मुक्त हो जाएंगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समान, मरा 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 निकल गया ना, अब ब्रह्म के समान बन गया। आज भी अपने नाम से ही जगत को उद्धार करने वाले बन गए। और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भव सिंधु माने जन्म और मरण कहूं ना, यही दुख का कारण है। यह सुख जाएगा भगवान के नाम से। अगस्त जी ने समुद्र का सारा पानी पी लिया, उसे सुखा दिया नाम के बल। शंकर जी नाम के बल पर सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। गणेश देवताओं की पूजा हो रही थी, जो आगे किसकी पूजा की जाए। इनका तो वाहन चूहा, चूहा कितना चलेगा। और उधर लक्ष वो दुर्गा जी बैठ गई सिंह, सिंहवाहिनी सिंह पर, कोई गरुड़ पर चला, कोई कुछ चला, कोई दूसरे दूसरे बाणों से चला, और पृथ्वी का घूम करके आना है, जो आएगा उसकी पूजा होगी। नारद जी ने देखा जो ये गणेश बड़े दुखी हैं, जो क्या हो गया, तो मेरी पूजा कोई नहीं करेगा, तो तुम्हारी पूजा सब करेंगे। कैसे, अभी राम नाम यहीं पर लिख दो। राम नाम लिख दिया, कह जे इसके चारों तरफ में परिक्रमा कराओ। बस उसकी परिक्रमा की, और इसके बाद देवता लोग आए, कोई 6 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई कुछ दिन में, कोई कुछ दिन में। मैंने गणेश जी की पूजा होगी, क्यों, राम के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए इन्हीं की पूजा होगी। तब राम नाम के बल से गणेश जी की भी पूजा होती है, इसीलिए गणों में ईश हो गए। इसलिए भगवान का भजन कीजिए और सुखी रहिए। यदि कोई सुखी और शांति से रहना चाहते हैं, सदाचार संपन्न होकर भगवान का भजन कीजिए। एक महापापी अजामिल भी, कोई सदाचार नहीं, वो यदि भगवान को पा सकता है भगवान के नाम से, तो सदाचार संपन्न हो करके नियमों में बद करके एकांतिक रूप में जो भगवान का भजन करेगा, उसकी क्या क्यों नहीं गति होगी। इसलिए निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बड़े दयालु हो चाहते, एक बार भी जैसे तैसे उठते बैठते फिसलते किसी भी प्रकार से हमारा नाम तो कोई ले। इसलिए आप लोग किसी प्रकार से भगवान का नाम लेंगे और सदाचार रह करके एक्सपर्ट गुरु से, गुरु का लक्षण यह है संसार से परम विरक्त होगा, सारी शंकाओं को दूर कर देगा, समाधान मिला देगा, और स्वयं भगवान का नाम परायण होगा। ऐसा गुरु यदि मिल